نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال الله في مقام الأخر إن الله يحب المحسنين وذلك جزاء المحسنين وأحسنوا والله يحب المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وبالوالدين إحسانا ولا تقولوا مال اليتيم التي ولا تقربوا مال اليتيم بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ میری اس پڑھنے کے انداز سے بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں مختلف آیات کے وہ حصے جس میں لفظ احسان آسن کسی بھی طرح سے آیا ہے. تو آج کی اس خوبصورت سی نشست میں ہم احسان پہ بھرپور بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر لیں. پہلی بات کے لفظ احسان ہا سین نون سے نکلا ہے. عربی زبان میں قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 194 ٹائمز استعمال ہوا ہے. یہاں سے آپ اس کی اہمیت کو نوٹ کر سکتے ہیں. اور ٹوٹل آیات 177 یعنی کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 16 آیات ایسی ہیں جس ایک آیت میں دو دفعہ آیا ہے. یہاں سے آپ کو اس لفظ کی خوبصورتی دکھے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ احسان ہوتا کیا ہے. اردو میں ایک لفظ ہم احسان بولتے ہیں تو معذرت ہے کہ عربی کا احسان اردو کے احسان سے مختلف ہے. حالانکہ لفظ اردو کا احسان جب وہ بھی وہی مادے سے ہے. ہمارے تصور میں وہی ہے حق سے زیادہ دینا اور آپ کا بڑا احسان ہے آپ میرے محسن ہیں ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں احسان کو تھوڑی سی ایک اور فارم سے لیتے ہیں اور میں جس فارم کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ دی ایکسیلنسی ہے سپرلیٹیو ڈگری. چند جملے میرے لکھ لیں پھر آپ کو پاور پوائنٹ کے ساتھ بھی لے کے چلتے ہیں. میری نظر میں احسان اور محسن ہونا کیا ہے کہ آپ کی کوششوں میں 99 سے 100 کی کمی تھی. بس کتنا فرق ہے ایک درجے کی. آپ 99 پہ کھڑے تھے آپ کو تو ڈبل لائن چلتی ہے نا 00 لیکن جب آپ 100 پہ ہوتے تو 3 فگرز آ جاتے 100. آپ کوششوں کے رخ میں کاموں کو کرنے میں آپ اپنی زندگی میں آپ تعلق باللہ میں جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں آپ اس کو اگر لے لیں تو انسانوں کی اکثریت 99 تک پہنچ جاتی ہے اور اس پہ یا تو مطمئن ہو جاتی ہے کہ اور کیا کرنا ہے ہم نے اور کیا کریں. اور مجھ سے بھی ایک آدھ سسٹر نے کبھی کبھی ایسا سوال کیا کہ نمازیں ہم پڑھتے روزے ہم رکھتے اب بتائیں آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں. تو ہم تو کچھ نہیں چاہتے آپ سے. آپ کا رب آپ سے جو کچھ چاہتا ہے وہ آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا ٹھیک ہے. صرف ایک درجے کی کوشش. یہ سب لکھ لیں سارے ایڈمنز کے لیے بھی ہے سارے ہیلپرز اور سارے ساتھیوں کے لیے اور یہ سب سے بڑھ کے میرے اپنے لیے. ہماری کوششوں میں صرف ایک درجے کی کمی رہ جاتی ہے کبھی جو ہمیں محسن نہیں بننے دیتی. ہم سب نے سنی ہوئی حدیث جبریل کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل انسانی روپ میں آئے تھے اور ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے کچھ سوالات کیے. اس میں پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور انہی سوالوں میں سے ایک سوال کیا تھا کہ مل احسان احسان کیا ہے. پھر اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ قیامت کے بارے میں تھی کہ قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں. लेकिन आज आपके मेरे लिए उसमें जो हिस्सा था कि जब उन्होंने एहसान का सवाल पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। तो एहसान क्या है? अल्लाह की इबादत ऐसे करना कि आपको ये महसूस होने लगे कि आप अल्लाह को देख रहे हो। बड़ा आला दर्जा। अगर आप इस तारीफ को थोड़ा सा समझ लेना कि आप और मैं आज यहाँ क्यों बैठे हैं, तो हम आज ये सीखने और ये पहचानने के लिए बैठे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के हर मामले में, अपने हर रिश्ते में, अपने हर ताल्लुक में मोहसिन कैसे बनना है और एहसान के दर्जे पे कहाँ जाना है और ये एहसान का दर्जा होता क्या है और अल्लाह और बंदे के बीच में एहसान जिसको आप इबादत कहते हैं वो क्या होती हैं और बंदों के बीच में एहसान क्या होता है। आप देखिए कि हदीस के अल्फाज क्या थे, अन ताबुदुल्लाह का अन्नक तराहु, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। ज़रा सोचिए, किसी को देखना और उसको ना देख सकना में फ़र्क होता है? मैं इसको ऑन साइट और ऑनलाइन से तशबीह देती हूँ कभी कभी। उस्ताद सामने हो और उस्ताद ना हो, आप एक मशीन के सामने बैठे अपनी पूरी मेहनत और कोशिश से सीखते हैं, फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। चलिए आप 3 सेकंड तक और मैं भी खुद को इस वक्त ये एहसास तो दिलाएं। देखिए मैं और आप इस वक्त इल्म ले रहे हैं ना, इल्म की महफिल में, और इल्म इबादत की आला किस्म है। एहसान क्या है? अंताबुदुल्लाह का अन्नक तराहु, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। चलिए अब आप अपने आप को देखें, इस वक्त आपका मेरा इस महफिल में बैठना ये इबादत है? इल्म तो इबादत की बेहतरीन फॉर्म है। 3 सेकंड में खामोश रहती हूँ, आप ये फीलिंग लाएं अपने ऊपर। इस वक्त अल्लाह को आप देख रहे हैं। अब आप इस कैफियत को शायद महसूस कर गए तो बस आज यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। नमाज़ पढ़ते हुए, रोज़े रखते हुए, गुनाह करते हुए, सवाब करते हुए, इंसानों से डील करते हुए, हज, उम्रा, ज़कात, बाज़ारों में शॉपिंग, ज़िंदगी का हर पहलू ईमान वाला इबादत समझ के करता है। आज जवाल के दौर में हमने इबादत को मस्जिद में रखा। आप कहते हैं नहीं, जब मैं नमाज़ पढ़ने लगती हूँ ना तो मैं जाए नमाज़ पे खड़ी होकर फिर तसव्वुर करती हूँ कि अल्लाह को देख रही हूँ, और वो जाए नमाज़ पे खाना काबा की तस्वीर भी तो इसीलिए बनाई है ना, और साथ छोटा सा रोज़ा रसूल भी बना दिया कि नबी भी याद आता रहे। चलिए हाँ, मैं उम्रे में गई, फिर मुझे अल्लाह बड़ा याद आया, फिर मैं काबे को देखा, फिर मैं बड़ा रोई, फिर मैंने हजरत अस्वद को देखा तो मैंने रो रो के चूमा। ये सब ठीक है, लेकिन मेरी अजीज़ साथियों और बहुत ही काबिल एहतराम, आज मेरी आपकी कुरानी ज़िंदगी और अमली ज़िंदगी में एक जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि हमने इबादत का मफहूम एक नटशेल में बंद कर दिया। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और वो नमाज भी तो खुश नसीब लोगों को नसीब होती है जिस वक्त वो देख लें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। हालांकि ईमान वाले की हर चीज़ इबादत है। बीवी के साथ ताल्लुक़, ये भी इबादत है। साहबा हैरान परेशान, अल्लाह के नबी ये इबादत कैसे हो गया? ये तो हम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कहा अगर ये ख्वाहिश तुम हराम तरीके से पूरी करते तो क्या तुम्हें गुनाह ना होता? तो फिर बीवी के साथ अपने जज्बात को पूरा कर लेना, क्या ये इबादत नहीं है? ठीक है, ये भी इबादत है। एक मर्द रिस्क हलाल कमाने निकलता है अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, क्या ये इबादत नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती तो अल्लाह का दोस्त होता है। चलिए एक ताजिर है, वो बैठा चीज़ों के भावताव कर रहा है, लेकिन सादिक है, सिद्दीक है, सच्चा है, झूठी कस्में नहीं खाता, हेर फेर नहीं करता। आपने फरमाया अत्ताजिरु सुद्दूक, सच्चा ताजिर क़यामत के दिन अम्बिया कराम और नेक लोगों की सोहबत में होगा। चलिए आप सोते हैं रात को? हाय हाय, इतने गुनाह की बात सोते हैं? नहीं, आप तो सोते हैं इसलिए कि जल्दी सोऊं ताकि तहज्जुद नसीब हो जाए, फजर ना कजा हो, کل سارے دن دی ہوئی ذمہ داریاں اللہ کی پوری کروں تو یہ سونا بھی عبادت ہے، اور اگر ایک آیت کے حصے میں سمیٹ دوں نا تو یہ موضوع پورا ہو جاتا ہے. سورۃ الانعام کی بالکل آخری آیتوں میں قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. ایک ایمان والے کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اس اللہ کو سامنے پاتے ہوئے کرتا ہے. تو پھر اس چیز کو آپ نے میں نے اس انداز سے محسوس کرنا ہے کہ ہم اس چیز کو دن میں ہر وقت یاد رکھیں. ایسے ہی ہے نا، دیکھیں نا جب ایک ایمان والے کا کھانا پینا ملنا جلنا، میں دسیوں مثالیں دے سکتی ہوں اگر میرا موضوع آج ورشپ ہوتا. چلیے آئندہ کسی جگہ کسی سیشن میں ہم، یعنی کوئی اگلا ٹرپ بنے گا تو اس میں لفظ عبودیت کو کر لیں گے، عبادت پہ باتیں کر لیں گے. تو میرا تو اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جانا بھی عبادت ہے، بیمار کی عادت بھی ہے، مجھے کسی سے محبت ہے صرف اللہ کے لیے، اس سے ملنا بھی محبت ہے، کسی کو دینا بھی عبادت، کسی کو لینا بھی عبادت. تو پھر ایمان والا تو 24 گھنٹے عابد اور عابدہ ہوتا ہے. ایک جملہ لکھ لیں شاید حق ادا ہو جائے اس موضوع کا. ہم 24 گھنٹے حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، لیکن کیفیت نماز میں رہ سکتے ہیں، اور نماز کی کیفیت میں رہنا ہی عبادت ہے. بات واضح ہے؟ تو کان کا ترا ہو، ہر وقت یہ احساس رکھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اور اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کا احساس کر لیں تو پھر تو دنیا بھول جاتی ہے. کوئی آپ کے سامنے چمکتی دمکتی حسین ترین چیز رکھے تو کیا آپ ٹوٹی پھوٹی کانچ کی چیز کی طرف توجہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کوئی آپ کو ہیرے آفر کرے تو کیا آپ اس کے بعد کانچ لیں گے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. ایک اور مثال دیتی ہوں، اس سے یہ بات بہت پیاری سمجھ آتی ہے. دیکھیے رات ہوتے ہی لائٹیں چلاتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے اب ہم دن میں بھی چلاتے ہیں، لیکن دن میں لائٹ چلانے کے لیے ہمیں کرنا کیا پتہ ہے آپ کو؟ پتا ہے، کرٹنز لینے پڑتے ہیں، پہلے کمرے کو ڈارک کرتے ہیں پھر لائٹ چلاتے ہیں نا. سورج چمک رہا ہو تو وہاں آپ 10 بلب بھی لگا دیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا لگے ہوئے. بس جب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت آپ کا رب اور آپ کا معبود ہوگا، پھر آپ کو بندوں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر آپ بندوں میں نہیں کھوتے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، پھر آپ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں تصور کی آنکھ سے صرف سوچنے کے لیے کہتی ہوں ڈرتے ہوئے، ایمان والے کی دو آنکھیں اپنی ہوتی ہیں لیکن دو اس کو اوپر سے ہر وقت تاڑ رہی ہوتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے کسی سے ایک لفظ بولتے، کسی کو ایک لفظ کہتے کہ یہ دو آنکھیں کون سی دکھ رہی ہیں؟ یہ ہیں کان کا ترا ہو. اور یاد رکھیے گا کہ تقویٰ کے درجے ہوتے ہیں، احسان جو ہے نا یہ تقویٰ کا آخری درجہ. ترتیب اگر دیکھیں نا، سب سے پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر تقویٰ، پھر ورا، اور آخر میں پھر احسان. احسان کا درجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو اپنے سے دور کرتے ہی نہیں. ایک جملہ بولنے دیں دکھ کے ساتھ، جیسے آج ہم اپنا سیل فون خود سے جدا کرتے ہی نہیں، ایون واش روم میں، ایون کچن میں، ایون ڈرائیونگ کے دوران. جھوٹ کے سچ، کل کسی سے بات ہوئی تو میں نے کہا ایک وقت تھا کہیں جاتے تھے نا تو مائیں جلدی جلدی اپنے بچوں کو اٹھا رہی ہوتی تھی، جوتے پہنا رہی، بچہ بچہ نہ رہ جائے ادھر، اور اب کیا ہے فون نہ رہ جائے. کوئی تصور بھی کرتا ہے؟ اور وہ آپ نے پاور پوائنٹ کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف فون ہے، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور جس کی یہ دونوں چیزیں ہیں وہ اس دن سیل فون گھر بھول گیا. تو سیل فون رو رہا ہے کہ ہائے ہائے میرا مالک مجھے بھول گیا گھر. تو قرآن کہتا ہے مجھے تو وہ روز ہی بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. تو قرآن کہتا ہے میرے بھی تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا. تو فون کہتا ہے میں تو اس کو دنیا کی خبریں دیتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے میں تو اس کو دنیا آخرت کی خبریں دیتا ہوں. اور فون کہتا ہے دیکھنا وہ ابھی ضرور آئے گا. اور قرآن کہتا ہے نہیں وہ نہیں آئے گا. اور اتنے میں وہ آتا ہے اور اپنا فون اٹھاتا ہے اور قرآن وہیں رہ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. یہ مثال سامنے رکھ لیجئے، आज ऑक्सीजन मास्क की तरह और गैस सिलेंडर की तरह दुनियावी गैजेट हमारे हाथों में। किस लिए? राबता, कम्युनिकेशन, ताल्लुक, ये है एहसान। बस इसको अल्लाह से जोड़ लें। अल्लाह जी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे आपसे बातें करनी होती हैं। अल्लाह जी, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। अल्लाह जी, मुझे हर फैसले में आपसे मदद चाहिए। कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तकदिरुका बिकुदरतिका, ये है अंताबुदुल्लाह का अन्नक तराहु। आपकी नज़रें क्या देखती हैं और क्या नहीं देखती, आई साइड कितनी वीक है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। वो आंखें जो हर वक्त अल्लाह के वजूद को पा नहीं पाती, वो आंखें नहीं है, कुरान में अल्लाह ने कह दिया। वो ऐसा है कि जो आंखों को पाता है लेकिन आंखें उसको पा नहीं सकती। और अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद तो नहीं, लेकिन खुलासा कुछ उसका टूटे फूटे लफ्ज़ों में यही है। कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, के हज़ारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने बेनियाज में। और यहाँ फिर रोइए, यही तकाजा तो था मूसा का, ए अल्लाह मैं आपको एक बार देख लूँ, याद है? इससे फोकस रहे। मूसा ने क्या कहा था तूर पे जाके, किसी को याद है तो बोल दें। तूर पे खड़े करके अपने आप को रखिए और ये सुनिए, कान न खतरा हो। क्या कमी थी मूसा को, बात तो हो ही रही थी कलीमुल्लाह, लेकिन कहा अल्लाह एक दफ़ा, अल्लाह एक दफ़ा एक झलक, एक दफ़ा तुझे देख लूँ। जवाब क्या है? लन तरानी, सूरत आराफ में जवाब है सवाल बकरा में। इस पे भी अल्लामा इकबाल ने कहा कि सदाए लन तरानी सुन के चुप हूँ मैं, यानी मैं चुप हूँ कि अल्लाह मूसा को नहीं नज़र आए तो मुझे कैसे आते। और तकाज़ों की कहाँ जुर्रत है या हाजत है मुझ फुरकत के मारे को। कहते मैं भी अल्लाह से बड़ा उदास हूँ, मैं भी अल्लाह ताला को देखना चाहता हूँ, पर मैं कैसे तकाज़े करूँ, क्योंकि मैं तो मूसा जैसे नबी का जवाब अल्लाह ने जो उनको दिया था वो सुन रहा हूँ। तो देखिए, ये है प्राइम पीक क्लाइमेक्स ऑफ रिलीजन। आपको मुझे सामने बैठे लोग दिख रहे हैं ना, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है जो साइड्स पे बैठे हैं या रिसेप्शन पे बाहर, उनको मैं नहीं देख रही होंगी। घर से जो सुनते हैं कभी वो नहीं देख पाते, लेकिन जिस तरह मुझे इस वक्त आपके यहाँ मौजूद होने का यकीन है, और हम अपने गैजेट से देखें तो हमें ये भी पता चल जाता है घरों से कितने सुन रहे हैं। शक्लें तो नहीं दिखती, क्वांटिटी तो आप देख ही सकते हैं ना, कमोबेश तसव्वुर की आँख से हम देखते हैं कि लोग बैठे हैं घर में अपनी कंप्यूटर डेस्क पर लिख रहे हैं। सारी बात को समेटू, जिस तरह इस वक्त मुझे आपके सामने नज़र आने का यकीन है, इसी तरह का यकीन कई हज़ार गुना बढ़ा लें, मैं अल्लाह को देख रही हूँ। बड़ी बात है। सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान इस दुनिया में अल्लाह को देख सकता है? अब अगला सवाल लिखिए। मुझे तो लगता है सिर्फ हम यही तारीफ ही कर लेंगे तो बड़ी बात है, अभी तो बातें बहुत सारी हैं। क्या ये जो बात है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो क्या इज़ इट रियली पॉसिबल? ये एक बड़ा फिकी इशू है, हम उस फिकी इशू में जाते ही नहीं कभी, कि क्या अल्लाह के नबी सल्लम ने मेराज के मौके पे अल्लाह ताला को देखा था। हज़रत आयशा सिद्दीका से ये सवाल किसी ने किया, बल्कि आयशा ने अल्लाह के नबी से किया था कि अल्लाह के नबी, क्या आपने अल्लाह सुब्हान तआला को देखा है? तो क्या आयशा, वो तो एक नूर है और मैं नूर को कैसे देख सकता हूँ? सूरज की आंखों में आंखें डाल के नहीं आप देख सकते, आंखें चुंधिया जाती हैं, एकदम बहुत लाइट आती है। तो जब हम छोटी छोटी लाइटें और क्रिएशन और मखलूक को नहीं देख पाते, जब वो बहुत चमक जाती है, तो क्या हम खालिक को देख सकते हैं? तो लिख लीजिए, आपकी मेरी जो केमिस्ट्री है, आपकी मेरी जो बायो बनी हुई है ना, उसके तहत इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुबहान तला को कोई नहीं देख सकता, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं देखा। हाँ, लेकिन ख्वाब ने देख सकते हैं, अल्लाह के नबी ने अपने रब को ख्वाब में देखा है। चलिए फिर आगे एक सवाल और बना लेते हैं, तो टॉपिक इतना प्यारा, क्या फिर हम अल्लाह को कभी नहीं देखेंगे? क्या हम मरने के बाद अल्लाह को नहीं देखेंगे? तो इसका जवाब ये है, मेराज है। जैसे दुनिया में एहसान दीन की मेराज है ना, द टॉप मोस्ट, इससे ऊपर है ही कुछ नहीं। इसी तरह मरने के बाद के एजाजात और इनामात और जो खैर आफियत की चीज़ें हैं ना, उसकी रोशनी में सबसे ऊंची चीज़ रब का दीदार है। वजूह यौम इज़ नादिरा इला रब्बिहा नासिरा। कुछ चेहरे उस दिन कितने चमक रहे होंगे, क्योंकि वो अपने रब को देखने वाले होंगे। तो देखेंगे, फिर आप सवाल कीजिए कैसे। अल्लाह हमें एक नए सिरे से बना देगा। अल्लाह कहते हैं ना, अनशाहुन्ना अबकारा, हम नए सिरे से इंसानों को बनाएंगे। मरने के बाद, क़यामत के बाद, जो हमारी नई डिज़ाइनिंग होगी ना, उसके तहत अल्लाह ताला हमारे अंदर ये कैपेसिटी डाल देंगे कि हम अपने रब को देख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखेंगे। अब अगला फिर एक सवाल, सारे ही देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे? चलिए, जो देखेंगे वो सारे एक ही जितना देखेंगे। अब यहाँ मुझे दो तीन जुमले जो दिल से उबल रहे बोलने की इजाज़त दें तो बोल दूँ। सिर्फ मैं मोहब्बत के साथ जो सोच रही हूँ वो कह रही हूँ, दुनिया में जितनी कसरत से रब की किताब को देखते थे, वहाँ उतनी कसरत से रब को देखेंगे। दुनिया में जितनी कसरत से उन रास्तों पे चलते थे जिन रास्तों पे रब का प्यार मिलता है, उतनी कसरत से देखेंगे। देखिए, हम अपनों से मिलने को बेचैन होते हैं, कितना प्यार होता है। और कभी आपने चेहरे की चमक देखी है जब किसी बिछड़े हुए को मिलते हैं? कभी एयरपोर्ट पे देखा आपने, माँ बच्चा मिलता है, माँ बेटी मिलती है, कई साल का बिछड़ा हुआ बच्चा मिले और शौहर बीवी मिले, वो चमक आंखों की कभी देखी है? ये सब माती हैं। उस दिन वजूह हुई यौम नादिरा, वो क्या चमक होगी चेहरों की, वो क्या फेशियल होगा और वो क्या उनकी कैफियत होगी, ये मांगा करें। कोई रोज़ करेंगे, कोई हफ्ते में एक दिन, क़यामत के दिन जिस तरह हमारे यहाँ जुमा होता है ना, जुमे का दिन, उसको वहाँ यौमुल मजीद कहेंगे। और यौमुल मजीद वाले दिन जन्नत में एक बाजार लगेगा, और अफसख नाम या कुछ दूसरा और भी नाम आता है, इमाम इब्ने कय्यम की एक बहुत प्यारी पोएम है, उसमें उस वादी का भी नाम मौजूद है। वहाँ एक बाजार लगेगा और जन्नती मर्द जाएंगे, या मर्द से मुराद अब औरतों की डिस्क्रिप्शन नहीं है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं कहने की, यानी जन्नती लोग वहाँ जमा होंगे। फिर वहाँ कुर्सियाँ लगेंगी, जैसे आपका ये हाल लगा हुआ है ना, सजा हुआ है, कुर्सियाँ, स्टेज होंगे, कोई चांदी की कुर्सियाँ, कोई सोने की, कोई छोटी, कोई बड़ी, और लोग अपने मरातिब के मुताबिक वहाँ बिठाए जाएंगे। सबसे आला मर्तबे किन के होंगे क़यामत के दिन, मैदाने हशर में, के बाद उसके जन्नत में भी? अम्बिया के। याद रखिए, इंसानियत की मेराज रसालत है, लिख लें। जैसे दीन की मेराज है एक मोमिन का, या मेरे आप के लिए जो सबसे आला दर्जा है आमाल के एतबार से, वो तो मोहसिन बनना है, लेकिन जो रैंक्स के एतबार से वो सिद्दीकियत है। सिद्दीक से ऊपर नहीं इंसान जा सकता आम, लेकिन सिद्दीक से ऊपर सिर्फ दो मर्तबे रह जाते हैं, एक नबूवत का और उससे भी ऊपर रसूलों का। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल रसूलों को मिलेगा, और रसूलों में से भी फिर उलुल अज़्म, पांच पहले पैगंबर, हज़रत नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन पांचों के नाम भी कुरान में इकट्ठे आए हैं, इनका बहुत प्रोटोकॉल होगा। और अल्लाह के नबी को मेराज के मौके पे ये झलकियाँ भी दिखा दी गई आसमानों से गुज़रते हुए कि किस आसमान पे कौन सा नबी है। हर एक की कुर्बानियाँ, हिजरतें, इखलास, ये उसके दर्जे बढ़ा देगा। आप और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिस दर्जे पे पहुँच सकेंगे ना जन्नत में, वो दर्जा होगा कि जहाँ आप और मैं उस हॉल में बुला ही लिए जाएं। हम नहीं कहते स्टेज पे बिठाएं, हम नहीं कहते लूलू और याकूत की कुर्सियों पे बिठाएं, हम नहीं कहते सोने चांदी की कौचिस पे बिठाएं, हम तो कहते हैं, और मैं अपने लिए तो कहती हूँ, इस दरवाजे के मैट के पास बैठने की भी इजाज़त मिल जाए, इन द मली के मुक्तदिर। आप पढ़िए सूरत नजम में, शायद जा कमर है आखिरी आयत, इन द मली के मुक्तदिर। बड़ी इज्जत इख्तियार वाले की बैठक में बैठे होंगे लोग, अल्लाह के ड्राइंग रूम में बैठेंगे जन्नती, और वहां फिर वो प्यार मोहब्बत की बातें होंगी जो यहां हो रही हैं, कान कतराहू। फिर अल्लाह अपने बंदों को वहां बुलाएगा, तुमने ये किया, बातें होंगी। जैसे हम काफी अरसे बाद मिले ना, फिर बातें करते हैं, आपको तो ये भी हुआ, फिर आप मुझे याद आई। अल्लाह उन बंदों से वहां बातें करेगा, और आपने फरमाया कि तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं के चांद को बगैर बादलों वाली रात में कोई देखे। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछा, कभी ऐसा हो तो उस चांद को देखने में कोई रुकावट होती है? कहा, नहीं नहीं होती ना, पूरा खिली हुई रातों सितारे चमक रहे और उसमें 14वीं का चांद है। अब मुझे बताइए, क्या उस चांद को देखने में कोई रुकावट रास्ते में आएगी? नहीं आएगी ना। फरमाया, इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। और सबसे बड़ी बात, कोई तर्जुमान, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, कोई वकील, कोई मशीर बीच में नहीं होगा। मेरा दिल कह रहा है कि दो नफिल इस वक्त अगर हम पढ़े ना, और इस कैफियत में आके तो पढ़े, आप सुनने में कितना मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है हिले तो शीशा टूट जाएगा। ये है नमाज का क्लाइमेक्स। ऐसी नमाज हो, कान न कतराहू। ऐसे मामला तो घर वालों से, कान न कतराहू। ऐसी डीलिंग्स हो, और क्या अच्छों से, अपनों से नहीं, मुखालिफों से, दुश्मनों से, हरीफों से नहीं, हलीफों से भी, हलीफों से नहीं, हरीफों से भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर ये कैफियत आपको मुझे दुनिया में मिल जाए तो दुनिया जन्नत है, फिर हमारा इस दुनिया में दिल लग जाएगा, इतना मज़ा आएगा। हम कहेंगे अब जन्नत में जाके क्या लेना है, इधर ही रहते हैं। और ये है जिसको सूरत तौहा में अल्लाह अपने प्यारे नबी को कहते हैं कि नमाज पढ़ो ताकि तुम खुश हो। हम कहते हैं नमाज पढ़ें ताकि अल्लाह खुश हो जाए। एक जुमला लिख लें, हमारी इबादत से अल्लाह बाद में खुश होता है, हम पहले खुश होंगे। अगर मैं ही नहीं खुश अपनी नमाज से और अपने मामलात से, इबादात से, तो अल्लाह खुश होगा? साथ बुड़बुड़ा रहे हैं और साथ रोज़ा रख रहे हैं, गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी, लंबा बड़ा, लंबा बड़ा, हाय एक नमाज पढ़ी, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, एक आ गई। आप ज़रा सोचें, आप बुड़बुड़ कर रहे हैं तो क्या आपको उस नमाज से, या फिर जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसको उस नमाज से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपने लिए गोल बनाएं, अल्लाह की निगाहों का अपने ऊपर रखें। एक और छोटी सी मिसाल शायद आपको फ़ायदा दे दे। आजकल पाकिस्तान में उर्दू में और वेस्ट में तो इंग्लिश में अक्सर जगहों पे लिखा होता है, उर्दू में क्या होता है कि खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है, होता है। और इंग्लिश में भी लिखा जाता है, यू आर बींग वॉच्ड बाई आवर कैमराज। पहली कैफियत क्या थी कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अब आगे अल्लाह कहते हैं कि इतना तुम्हारा इमेजिनेशन अभी स्ट्रांग नहीं हुआ, तो मांगे, मैं आपको भी कहूँगी कि ये मांगे। इसके बाद आपको दुनिया की अदालतों की ज़रूरत नहीं रहती कि जो अदालत आपको इंसाफ दे। आपका दिल आपको बताता है कि मेरा रब जो देख रहा है, तो मैं उसकी नज़रों में अगर उसके सामने गलत कर रही हूँ, तो मैं दूसरों के बीच में करूँ ना करूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी ये एक पॉइंट लेकर फिर मैं आपको आगे ले जाऊँगी। यानी ये सवाल बना लेते हैं चले, कि ये फीलिंग्स रख के कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ, बंदे के अंदर तब्दीली क्या आती है? तब्दीली ये आती है कि नज़रों में कोई जचता ही नहीं है। देखिए ना, अल्लाह को आप देख रहे हैं तो क्या बंदों में उलझेंगे? बंदों के साथ आपका मामला अच्छा चलना, बुरा अच्छा, आप कहेंगे अल्लाह को मैं देख रही हूँ, मुझे और क्या देखना है? और अल्लाह को देखते देखते अल्लाह के रस्तों पर बंदा चलता ही जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चला देगा, चलते जाएंगे। मुश्किल आई दीन के रास्ते में, आप अल्लाह को देखने में इतने मगन थे, एहसास ही नहीं हुआ। मिसाल दूं, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, कोयलों पे लिटाए जाते थे, पत्थरों पे घसीटे जाते थे, यही गोश्त था ना, जैसे मेरा, आपके मेरी खाल जैसी खाल थी ना, दर्द क्यों नहीं होती थी? और अगर दर्द होती थी तो हाय मैं मर गया करके पीछे क्यों नहीं हो जाते थे? इसलिए अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तराहू, इतने मगन होते थे इस सोच में कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उनको एहसास ही खत्म हो जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे आप में से किसी को भी ऑपरेशन से गुजरना पड़े। आजकल आपको पता है कि बेहोश करने से की बजाय क्या करते हैं, जब किसी को ऑपरेट करते हैं ना, एक कैप होती है हेलमेट टाइप की, मरीज से बातें करते करते उसके सर के ऊपर से ऐसे ऐसे उसको आगे करते जाते हैं, और मुझसे किसी एक ने शेयर किया तभी मैं एंजॉय कर रही हूँ। वो कहती हैं साजा मुझे ऐसे लगा कि मैं लेटी में आ रहा हूँ, ऐसे बातें कर रहे थे मुझसे, तो बस मुझे इतना पता है कि मेरे सर पे उन्होंने कुछ ऐसे रखे ना ऐसे, तो जैसे आप कभी वो किसी एक्वेरियम में गए हों या जैसे फिजा में खला में गए हों, वीडियोज ऐसी होती है ना। कहती मुझे ऐसे ना सितारे चमक, ऐसे लगा कि बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, खो जाते हैं मंजर की रानाई में, कान न कतराहू, फिर ऑपरेशन करो, टांग काटो, बाज काटो। और जब ये सास होता है मैं अल्लाह को देख रहा हूं, तो फिर एक दांत नहीं दूसरा भी तुड़वा लेता है बंदा नबी के रुखसारों में से हौद की कड़ियां निकालते हुए। ये जो दीन के रास्ते में रुकावटें, मुश्किलें, आजमाइशें और फितने आते हैं और आप जमे रहते हैं, ये कान न कतरा हुआ है। इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, लोग डरा रहे, लोग बहका रहे, लोग खौफज़दा कर रहे, आपको पता ही नहीं, आप तो गुम है कहीं और ही, क्योंकि आप तो कुछ और देख रहे हैं। कभी अपने बच्चों को कार्टून देखते देखा करें, यूं हवन को की तरह देखते हैं, कमान इधर आओ, बच्चे सुनते नहीं, वो खोए में उस मंजर में। जवान बच्चों के कानों में आप हेडफोन लगा दें और आगे स्क्रीन खोल दें, उनको पता ही नहीं माँ बुला रही है कि नहीं। जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इतना गर्क कर देती हैं अपने अंदर, तो ज़रा तो सोचिए तो सही कि ये सब बनाने वाला सामने आ गया तो क्या होगा।